नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना, और आज के इस अंक में इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ नीलांजन दत्त। नीलांजन, स्वागत है आपका।
शुक्रिया।
नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत में इस महीने की 14 तारीख से इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय खोखो परिषद ने विश्व कप के लिए नए नियम जारी किए, और दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को दिसंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामित किया। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले हम आपको मलेशिया लिए चलते हैं। क्वालालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जा रहा है। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, और इस जोड़ी ने आज थाईलैंड की और नीचा और सुकिता सोवाचाई की जोड़ी को लगातार गेम में 21-10 से पराजित कर अगले दौर में जगह बनाई। और अब से कुछ देर बाद पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का सामना ताइवान के शी यू जेन से होगा। नीलांजन, बैडमिंटन की बात करें तो एक वक्त था कि जब अगर महिला डबल्स की बात करें तो इतनी कोई जोड़ी फेमस नहीं हो रही थी और ना ही वो आगे तक पहुंच पा रही थी, लेकिन ये जो जोड़ी है इसने पिछले कुछ टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन की है। खिताब जीतना अपने आप में एक अलग बात होती है, लेकिन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचना, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना, यहाँ तक कि फाइनल में पहुंचना भारत के लिए एक अच्छी बात है।
जी बिल्कुल, और जैसे आपने जिक्र किए, लोग सुपर 300 लखनऊ में जीते भी थे
जी
लास्ट ईयर एंड ऑफ द ईयर पे। गायत्री चंद का बेटी है। जैसे आपने बोले कि डबल्स में एक टाइम पे ज्वाला गुप्ता और अश्विनी पोनप्पा। हाँ, हम कॉमनवेल्थ में भी वो लोग अच्छे खेले थे, पार्टिसिपेशन हुआ करता था, लेकिन जिस मकाम पे हम लोग सोचे थे कि वो लोग डिलीवर होंगे, शायद वो इस मकाम पे नहीं पहुंच पाए। बट हालांकि वो लोग हम लोग का बहुत बड़ा प्राइड है। डबल्स एक ऐसा गेम है जहां पे ऑफ द कोर्ट आपका कमरेडरी कैसे होता है बहुत कुछ मैटर करता है। बहुत सारे डबल्स का पेयर ईगो क्लैशेस में खत्म हो जाता है।
True.
एक सबसे बड़ी निदर्शन हम लोग का देश में जो इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेस और महेश भूपति था, द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम, हम लोग का हमेशा गर्व है उन लोग के ऊपर। लेकिन समथिंग ऑफ द अदर वेंट रॉन्ग। लेकिन यहां पे ये मैं त्रिशा और गायत्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो तीन सिग्निफिकेंट पॉइंटर्स में बोलना चाहूंगा। एक है कि बहुत कम उम्र से ये लोग इकट्ठा खेल रहे हैं, तो बचपन से जब दोस्ती होता है ना, हम लोग कहते हैं अरे स्कूल की दोस्ती, स्कूल का दोस्त, बचपना की दोस्त, वो हम लोग के लिए ज्यादा दोस्त बन जाते हैं। तो यदि जब स्टारडम आएगा, ऑब्वियस ये जाहिर है कि एक ना एक दिन आपका स्टारडम आएगा, ऑलरेडी दे आर स्टार्स, वो आपस में कोई डिवाइड एंड रूल डिवाइड दोनों के पार्टनरशिप पे नहीं हुए। तो डबल्स इज ऑलवेज ए गेम ऑफ पार्टनरशिप जहां पे आप एक दूसरे के भरोसे में चलते, एंड ऑफ द फील्ड फ्रेंडशिप, कमरेडरी एंड बॉन्डिंग एक डबल्स पेयर को बहुत आगे ले जाता है।
नीलांजन, अगर इनके गेम की बात करें तो जिस तरह से एक बैडमिंटन के अंदर चपलता होनी चाहिए, जितनी तेजी से गेम होना चाहिए, वो तेजी इनके गेम में नहीं है, लेकिन कलात्मक नजर आती है, तो इसमें कोच का कितना रोल रहता है?
बहुत बहुत भयंकर, क्योंकि एक बैडमिंटन टोटली टेक्निकल स्पोर्ट है। आपकी जो मेन जो बेसिक्स है हर कोई गेम का, जो टेक्निकलिटीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो यदि आपका बचपन से, यदि ग्रास रूट से, वेरी यंग एज से इनकल्केट हो जाता है कोई भी प्लेयर को, यहां पे हम डबल्स की जोड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, आपका फिनेस और दी स्पीड और दी पेस ऑफ दी और दी इंटेंसिटी एंड दी टेम्पो, वो आपका आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो जाता है। क्योंकि अभी तक जब तक आप 18 प्लस होके अर्ली 20s में और लेट टीनेज में जाओगे, 19-20 पे पहुंचेंगे, गेम बॉडी आपका और भी फिजिकल हो जाएगा, उस समय आपकी जो ये फिजिकल प्रोवेस है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, बट द बेडरॉक ऑलवेज आपका टेक्निकलिटीज के ऊपर डिपेंड होता है।
लक्ष्य सेन बहुत दिनों बाद वापसी कर रहे हैं, बहुत संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में?
गुड लक लक्ष्य, जहां पे पहुंचना चाहिए। लक्ष्य अभी तक नहीं पहुंच पाए, हालांकि उसका ग्लिम्सेस हम लोग बहुत होप जताए थे ओलंपिक्स में। हाँ, लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किए, ही कुड नॉट मेक इट टू द पोडियम। लेकिन एक बात जैसे आपने बोले कि हार जीत हर कोई गेम का, हर कोई स्पोर्ट का एक अंग होता है, लेकिन लक्ष्य सेन अभी डिस्पाइट बीइंग ए यंग गाय बहुत दिन सर्किट में घूम रहा है, तो ये 2025 मेरे नजरिया में लक्ष्य का जो ब्रेकिंग इनटू द स्टारडम और दी लीगेसी लीव करने का, जैसे एचएस प्रणॉय ऑलरेडी किए है, पुलेला गोपीचंद किए है, 2025 लक्ष्य के उस हिसाब से डिफाइन करेगा।
इस बीच एचएस प्रणॉय को टूर्नामेंट में निराशाजनक शुरुआत का सामना करना पड़ा जब स्टेडियम में छत से पानी टपकने के कारण कनाडा के ब्रायन जेन के साथ उनका मैच बीच में ही रोकना पड़ा। ये मैच कल खेला जाएगा। बैडमिंटन को ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इस साल 14 जनवरी से योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन भारत कर रहा है। सभी मुकाबले इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में खेले जाएंगे। सुनते हैं इस पर विस्तृत रिपोर्ट विशाल की।
लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु की अगुवाई में 21 सदस्यीय भारतीय दल इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। इसके अलावा ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन, एन से यंग और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी शी युकी भी इस टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे। टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में 3, महिला सिंगल्स में 4, पुरुष डबल्स में 2, महिला डबल्स में 8 और मिक्स डबल्स में 4 जोड़ियां चुनौती पेश करेंगी। टूर्नामेंट के पिछले आयोजन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंची थी, जबकि एचएस प्रणॉय ने पिछले साल पुरुष सिंगल्स का सेमीफाइनल मुकाबला खेला था। इस साल चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले चिराग और सात्विक की जोड़ी पुरुष डबल्स में एक बार फिर खिताब की प्रबल दावेदार होगी। चोट से वापसी कर रहे सात्विक पेरिस ओलंपिक के बाद अपनी लय दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस जोड़ी के अलावा भारत की उम्मीदें पूर्व चैंपियन लक्ष्य सेन और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पर भी टिकी होंगी। पुरुष डबल्स में ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के लियांग वेई किंग और वांग वांग की जोड़ी नजर आएगी, तो वहीं इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
निरंजन, सीजन की अभी शुरुआत ही हुई अगर कहना चाहे, और एक के बाद एक बड़े टूर्नामेंट बैडमिंटन खिलाड़ियों के सामने नजर आ रखे हैं। ऐसे में कुछ खिलाड़ी अभी मलेशिया ओपन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ इंडियन ओपन में खेलते हुए नजर आएंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी एक बार फिर हमारे को नजर आएगी और जिस तरह के रिपोर्ट में भी बताया जा रहा था कि चुनौती कड़ी होगी, लेकिन ये थोड़े से ऊपर नजर आएंगे।
ऑब्वियस, ये तो आपका इंडियन ओपन चैंपियन को शायद 10,000+ 11,000 पॉइंट्स मिलते हैं और बहुत बड़ी कंटिंजेंट है इंडिया का। आई बिलीव द लार्जेस्ट कंटिंजेंट हम लोग इस बार फील्ड कर रहे हैं। सात्विक और चिराग लास्ट टाइम फाइनल में पहुंचे थे, एचएसपी सेमीफाइनल में पहुंचे थे, विक्टर एक्सेलसन यहां पे आएंगे, तो ये सीजन ओपनर है। हाँ, और ये मोमेंटम सेट करेगा। अब मलेशियन ओपन चल रहा है लेकिन पूरी आपका सभी का निगाह इसके ऊपर, इंडियन ओपन के ऊपर टिकी रहेगी। एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा, लास्ट टाइम आपने जब पहले न्यूज आप रीड कर रहे थे कि एचएसपी का एचएस प्रणॉय का मैच किस लिए रुक दिया गया कि बारिश, सॉरी पानी ऊपर से टपक रहा है, इमेजिन करिए हमारी देश में यदि हो जाता है तो। हाँ, ये तो लोग बोल देगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट खराब है, बैडमिंटन फेडरेशन के ऊपर कुछ नहीं है, मार्केटिंग पार्टनर्स ने कुछ नहीं किया है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमारे देश में यह नहीं होता, एक टाइम पे हुआ करता था। दूसरी कहानी यह है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हर देश में कभी भी हो सकता है। जस्ट बट कमिंग बैक टू द इंडियन ओपन, बहुत बिग टूर्नामेंट है, सीजन ओपनर हमारे देश में, टोन यहीं से सेट होएगा 2025
का। जी, इसमें यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारत के अंदर भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन आप विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को अगर भारत में खेलता हुआ देखेंगे या उनके साथ खेलेंगे तो चुनौती बढ़ती है, आपके खेल में सुधार आता है और शायद ये बैडमिंटन की खूबसूरती है और इसे बैडमिंटन संघ बहुत तेजी से भुना भी रहा है।
बिल्कुल, क्योंकि शायद आप इतनी बड़ी कंटिंजेंट आप बाहर जाते तो फील्ड नहीं कर सकते हैं
जी,
तो ये बाकी जो खिलाड़ी है टॉप लेवल के एलीट प्लेयर्स के साथ अलावा आपका जो बाहर है उनके लिए एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी और यही ब्यूटी ऑफ द गेम है। बैडमिंटन एक ऐसे स्पोर्ट है जहां पे लोगों को ट्रैवल करना होता है और एक सर्किट में जब लोग खेलता है बहुत ही लोनली फील करता है।
बैडमिंटन के बाद अब आपको हम लिए चलते हैं खो खो विश्व कप की ओर, जो इस महीने दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन ने खो खो विश्व कप के मैचों के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। ये नियम क्या होंगे इस पे सुनते हैं अभिषेक की रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आकाशवाणी का स्पोर्ट्स स्कैन लगातार खो खो के तमाम मैचों पर अपनी नजर रखेगा और आपको पल पल की जानकारी देगा। सुनते हैं अभिषेक को कि क्या कुछ है नए नियम।
खो खो विश्व कप में हर मैच 50 मिनट तक खेला जाएगा। मैच से पहले टॉस के जरिए दोनों टीमों को अटैकिंग और डिफेंस का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। हर टीम में 15 खिलाड़ी होंगे, जिसमें से फील्ड में 12 खिलाड़ी खेलेंगे, जबकि 3 बचे खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट के तौर पर रहेंगे। नए नियमों के अनुसार सेंटर लेन को पार करना, जल्दी उठ जाना, पीछे हटना और दिशा बदलना फाउल माना जाएगा। खो खो विश्व कप के लिए खेल का मैदान 26x20 मीटर का होगा और ये आयताकार होगा। नियमों के अनुसार हर मैच में 2 पारियां खेली जाएंगी। प्रत्येक पारी में 7-7 मिनट के अटैकिंग और डिफेंसिव टर्न होंगे। हर पारी के बाद 4 मिनट का विश्राम होगा और टर्न्स के बीच 3 मिनट का ब्रेक होगा। टर्न के शुरुआत में रक्षा पंक्ति के 3 खिलाड़ी डिफेंस के लिए मैदान में उतरेंगे। जब तीनों डिफेंडर्स को आउट घोषित कर दिया जाएगा, तब 30 सेकंड का ब्रेक होगा। डिफेंडर्स के अगले बैच को एंट्री जोन के माध्यम से 30 सेकंड के अंदर मैदान में आना होगा और अगर वह निर्धारित समय के अंदर मैदान में नहीं आता तो उन्हें लेट एंट्री के लिए आउट करार दिया जाएगा। अगर डिफेंडिंग टीम का कोई बैच 3 मिनट तक फील्ड में डटा रहता है तो उसे एक अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा और इसके बाद प्रत्येक 30 सेकंड के लिए एक अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा। अटैकर बैठे हुए अटैकर की पीठ को अपनी हथेली या हाथ से छुएगा और जोर से खो शब्द बोलेगा जो अंपायर या रेफरी को सुनाई देना चाहिए। अटैकिंग टीम को हर खिलाड़ी को आउट करने के लिए 2 अंक मिलेंगे। प्रत्येक टीम को 2 रिव्यू की अनुमति होगी। 2 इनिंग के अंत में ज्यादा नंबर पाने वाली टीम विजयी घोषित की जाएगी। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन।
निरंजन, जब स्थानीय खेल वैश्विक स्तर पर नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब हम विश्व के अंदर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने खेलों के बारे में और अपने खिलाड़ियों के बारे में।
ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड स्टेज में एक ही बात बोलूंगा कि रूल चेंजेस वर्ल्ड स्टेज में जो हुआ है वहां पे हम लोग को ज्यादा जल्दी जेल होना पड़ेगा। ये हॉकी जैसा नहीं है कि ग्रास से एस्ट्रोटर्फ जाने में हम लोग को बहुत टाइम लग जाए और हम लोग का दबदबा कम हो जाए।
इसी को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में 152वें मिशन ओलंपिक सेल की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत ने 2028 के ओलंपिक की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
आने वाले दिनों में टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसका नर्चर कैसे करना और नर्चर करके टॉप के तहत उसको नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्सपोजर देके ओलंपिक्स और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हमारे एथलीट सफल रहे, इस विषय पर डिटेल डिस्कशन हुआ।
नीलांजल, बहुत जल्दी हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं और 2028 तक हम कुछ ना कुछ और अलग करके आएंगे।
जी बिल्कुल, उम्मीदें यही है। दी मोस्ट इंस्पिरेशनल बात यही है कि सपोर्ट गवर्नमेंट से आ रहा है, गवर्नमेंट सोच रहा है, सपोर्ट से ज्यादा सोच रहा है और सोच 4 साल पहले है। सबसे पहले ये बोल दूं कि लोगों को लगता है कि अभी स्काउटिंग होएगा, स्काउटिंग अभी नहीं है। एलीट एथलीट्स ऑलरेडी त्रिवेंद्रम में और बाकी हर कोई सेंटर्स, हाई सेंटर्स में स्पोर्ट्स साइंस के जरिए आपका रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा है। उन लोगों का पाथवे क्या होगा ओलंपिक्स में, क्योंकि एक ओलंपिक्स का एक एलीट एथलीट जो 21 साल का ऑलरेडी स्काउटेड है उसका एक 4 साल का प्रोग्राम, आपका पीरियडाइजेशन कैसे होगा, वही इस मीटिंग पे ऑनरेबल मिनिस्टर बातचीत किए हैं।
क्या इसे प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है 2036 में ओलंपिक कराने का उसकी पहल माना जा सकता है?
बिल्कुल, ईच एंड एवरी ओलंपिक्स के एक एक स्टेपिंग स्टोन हमारा।
बैठक के बाद भारतीय बैडमिंटन के मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद ने कहा कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहां पर खिलाड़ी विभिन्न तरह के खेलों और विभिन्न तरह के पारिस्थितिकी तंत्र से आते हैं।
Everybody together needs to get their act together because at the world level we all need India to be put our best foot forward and I'm very happy with the kind of work the ministry has done to put this thing and I'm very hopeful that we will have positive results coming up in the future.
उधर हॉकी की बात करें तो हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस समय वेदांता कलिंगा लांसर्स का मुकाबला श्राचीराट बंगाल टाइगर से हो रहा है। अंक तालिका में श्राचीराट बंगाल टाइगर्स 3 मैच में 3 जीत के साथ 9 अंक लेकर पहले स्थान पर मौजूद है, जबकि वेदांता कलिंगा ने अब तक कोई मैच नहीं जीता है और वो तालिका में अंतिम स्थान पर है। और वहीं दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2024 महीने के लिए, दिसंबर के महीने की बात करें तो, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया और स्मृति मंधाना को। बहुत संक्षेप में बुमराह के लिए
ग्रेट,
बहुत संक्षेप में ग्रेट प्लेयर, बिकॉज ये दर्शाता है कि 32 विकेट उन्होंने बी बॉर्डर ग्रावस्कर ट्रॉफी में लिए हैं। और नीलांजन बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और उसकी सुइयां कहने की, आज के लिए बस इतना ही। नीलांजन, आपसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के संक में बस इतना ही, मुझे नवीन को दे इजाजत, नमस्कार।